आप सबने दर्शन किए थे तो आपको सबको पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं एक बार। जब आपने दर्शन किए थे तो आपके सबसे लेफ्ट साइड पे आपने देखे होंगे बहुत बड़ा फेस, गोल्डन गोल्डन। कौन है वो? कुबेर जी। सबसे पहले आपके लेफ्ट में जो थे वो कुबेर जी, फिर उनके इमीडिएटली बाद गरुड़ जी, गरुड़ जी के बाद स्वयं भगवान बद्री विशाल जी। और ये जो बद्री विशाल जी हैं, ये शालिग्राम शिला के रूप में हैं, जो कि प्रकट हुए थे इसी तप्त कुंड से, नारद कुंड से, और फिर से जब लुप्त हो गए थे तो क्या नाम है, दोबारा नारद कुंड में थे, और शंकराचार्य जी ने उनको वहां पर दोबारा स्थापित किया। और इनके बाद इमीडिएटली बाद छोटे से पीछे थे श्री उद्धव महाराज, और आगे रेड रेड कॉपर कॉपर के से विग्रह थे, वो हैं नारद जी। और राइट में बिल्कुल कॉर्नर पे दो हीरोज थे ब्लैक, वो थे नर नारायण ऋषि। ठीक है, तो अब आपने दोबारा से दर्शन कर लिए, अभी किए कि नहीं किए? तब सब अपने अपने पेपर निकाल लीजिए। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो, कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्णा परवर्तिता, परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षयक्षराय ते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधनम् मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादाय अतिनिचौचताकरा, हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हित्कंठयोस्फुरा। धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्य वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः, सद्यो हृदय वृद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्ततक्षणा। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुक्मुखादमृद्रव्यसंयुतं, पीबद्भागवतरसं माल्यं मुहुरहुरसिकभुवि भावुका। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्यायेश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम सुबह गए दर्शन किए श्री बद्री विशाल जी के, उसके बाद भक्तों के संग में भगवत प्रसाद का आस्वादन किया, और फिर हम दर्शन करने गए, श्री व्यास देव जी की गुफा के दर्शन किए। आप सब भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, इधर कुछ भी होगा पीछे से लोग आएंगे जाएंगे, उस पर ध्यान मत देना, है ना। जो इस मुख से निकल रहा है उस पर ध्यान देना, और नहीं दे सकते तो जो स्पीकर पे निकल रहा है उससे ध्यान देना, पीछे मत देखना। तो हमने श्री व्यास देव जी की गुफा के दर्शन किए, जहां पर बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् महाभारत और अन्य अन्य पुराणों का वर्णन किया। और वहीं से हमने वो स्थान भी देखा जहां पे गणेश जी ने उनको लिपिबद्ध किया। उसके पश्चात हम देखिए दर्शन किए सरस्वती नदी के, जो दर्शन अन्यत्र कहीं नहीं होते, केवल यहीं होते हैं। उस दर्शन को हमने प्राप्त किया सरस्वती जी के, नदी के। फिर हम दर्शन किए भीम पुल, इतना बड़ा जो चट्टान है भीम जी ने उठा के रखी थी, उसके दर्शन किए और उनके बारे में हमने ब्रीफ में सुना। फिर वापस आए, फिर हमने फिर से भगवत प्रसाद का आस्वादन किया, कुछ शॉपिंग करी, कुछ लोग सोए, और अब हम फिर से यहाँ भक्तों के साथ उपस्थित हैं आगे की चर्चा करने के लिए। तो जिस प्रकार से हमारी यात्रा का स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, जब यात्रा का लिखा था हमने, एडवेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम, एडवेंट प्लेस ऑफ श्रीमद् भागवतम और द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम यहाँ प्रकट हुई, किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम यहाँ प्रकट हुई, आज हम इसका वर्णन ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और किस प्रकार से इसमें क्या क्या शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए छुपी हुई हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हमने सुबह यहां तक तो सुना था कि व्यास देव जी ने भागवतम लिखी, सारे पुराण महाभारत इत्यादि लिखी। अब ये कैसे हुआ, भागवतम पर वो कैसे आए? वैसे तो श्री व्यास देव जी भगवान के वांगमय अवतार हैं, मतलब कि लिटरेरी इंकारनेशन है, मतलब कि शास्त्रों को लिपिबद्ध करने वाले अवतार हैं। और व्यास का मतलब होता है व्यास, उनका नाम व्यास नहीं है, व्यास देव जी का नाम व्यास नहीं है, उनका नाम क्या है कौन बताएगा? हाँ, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी। तो व्यास का अर्थ होता है जो विस्तार करें शास्त्रों का। तो सबसे पहले जो है एक ही वेद था और वो था यजुर्वेद। इस यजुर्वेद को समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार उनको, उन्हीं सेम यजुर्वेद को चार भागों में डिवाइड किया, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। और जब इनको इन भागों में डिवाइड किया, तब तक उसके बाद भी ये जो है वर्बल ट्रांसमिशन ही था, परंतु लिखित रूप में ये नहीं आया था, क्योंकि पहले के लोगों की जो स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी थी, एक बार सुन लिया हो गया। तो अब कलयुग आ रहा था और कलयुग में इसको लिपिबद्ध करना इतना आवश्यक था, क्योंकि कई बार सुनने के बाद भी हम भूल जाते हैं, है ना। इसलिए देखते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी अपने हर प्रवचन में बोलते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, जानवर नहीं है, हम मनुष्य है। प्रभुपाद जी बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। तो कई बार लोग समझते हैं कि एक ही बात क्यों रिपीट करते हैं बार बार, और उसका मुख्य कारण है कि श्रील प्रभुपाद जी इस बात को जानते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति कितनी स्ट्रांग है। तो हमेशा हमें याद रहे, इसलिए हर बार, क्योंकि वही नींव है, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है, इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद जी याद दिलाते हैं। तो यहां पर इनको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता हुई, तब आए श्री व्यास देव जी। व्यास देव जी ने स्थान चुना, जैसे हमने सुबह चर्चा करी थी, यही बद्रिका आश्रम का स्थान चुना। और ये बद्रिका आश्रम के स्थान पर व्यास देव जी ने पहले तो जो पुराण वेद थे इनको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करने के बाद अपने जो कुछ इनके स्पेशल वो थे, क्या नाम है, शिष्य, जैसे जैमिनी ऋषि इत्यादि, उनको एक एक ब्रांच उनको दे दी, जो स्मरण में नहीं है। एक किसको अथर्ववेद की ब्रांच दी, किसको कौन सी दी, किसको पुराण दिए। पुराण तो उन्होंने जो है सूत गोस्वामी को दिए, जो भी हमें याद नहीं है एग्जैक्टली, पर उन्होंने सारे अपने अलग अलग शिष्यों को, किसी को वेदों के ऊपर अथॉरिटी दी, किसी को पुराणों पे, किसी को इतिहासों पे। तो इन्होंने जब ये लिपिबद्ध किए, जब वेद लिपिबद्ध कर दिए, तो सब सोचा कि इतने वेद, और सबसे पहले तो ये वेद जो है, जो इसमें है तो इसमें संस्कृत, पर वो संस्कृत लैंग्वेज नहीं है जो कि हम लोग यूज करते हैं। जो संस्कृत हम लोग यूज करते हैं वो संस्कृत नहीं है वेदों में। वेद क्योंकि जैसे हिंदी भी होती है, अब हरियाणा में जाओ वहां पे भी हिंदी बोलते हैं, यूपी में जाओ वहां भी हिंदी बोलते हैं, है ना, पर दोनों हिंदी में कितना फर्क है, सही बात है ना। यूपी में आप जाएंगे वहां पर आपको हिंदी में बोलेंगे, कहां से आ रहे हैं आप, हरियाणा में जाए बस कैसे बोलेंगे, कहां से आया भाई, ठीक से। सो बात वही है, पर क्या चेंज है, डायलेक्ट चेंज हो गया है, डिफरेंट डायलेक्ट है। सो जो पृथ्वी पर जो हम संस्कृत यूज करते हैं वो अलग डायलेक्ट है, और जिस संस्कृत में वेद लिखे गए हैं वो स्वर्ग का डायलेक्ट है। स्वर्ग में जो लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज में, उस डायलेक्ट में, क्या नाम है, वेद लिखे गए हैं। तो समझना वैसे भी मुश्किल, पहले तो पढ़ेगा कौन और फिर उसके बाद समझेगा कौन, दोनों तरफ से मुश्किल। कई लोग बच्चों को जब गुरुकुलों में वेदों के कई मंत्र याद कराए जाते हैं और उनको मतलब नहीं पता होता उनकी 25 साल की उम्र तक भी, और उनको मंत्र सारे याद होते हैं, कई सारे उनको सूत्र याद होते हैं, जैसे संस्कृत में ना सूत्र याद करने पड़ते हैं, उस सूत्र भी उन्हें याद होते हैं, सब याद होता है, रटा होता है सब, पर उसका अर्थ पूछोगे सॉरी नहीं पता होगा। तो बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। अब इन्होंने सोचा कुछ करना पड़ेगा कि लोगों को समझ में आए, तो इन्होंने क्या किया, सूत्रबद्ध किया, उसको छोटा किया, सूत्रबद्ध किया कि इंटेलिजेंट लोग, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है एटलीस्ट हमारे धरातल की है, तो इसको ब्रह्म सूत्र के रूप में लिखा गया। उनका सार जो है, वेदों का सार लिखा किस रूप में, ब्रह्म सूत्र, या फिर उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। इस पे कई सारे आचार्यों ने कमेंट्री दी, जैसे कि हमारे संप्रदाय में जिसमें हम आते हैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने इस पे कमेंट्री दी और उसका नाम हुआ गोविंद भाष्य। क्या नाम हुआ, क्योंकि ऐसा पता लगता है कि उन्होंने जाके गोविंद देव जी से प्रार्थना करी कि जितना कम टाइम मुझे दिया है इसके ऊपर भाष्य लिखने के लिए, उनको टारगेट दिया गया था इतना टाइम में लिखना है, उनको लगा ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो वो गोविंद देव जी के चरणों में गए जयपुर में, और वहां से फिर वो बैठे, तो उन्होंने स्वयं बाद में बोला कि मैंने कुछ नहीं लिखा, गोविंद देव जी आए वो डिक्टेट किए, इसलिए मैंने लिखा, इसलिए उस भाष्य का नाम हो गया गोविंद भाष्य। श्रीपाद रामानुजाचार्य संप्रदाय जो कि श्री संप्रदाय है, उधर जो वेदांत सूत्र की टीका है उसका नाम है श्री भाष्य। इसी प्रकार से श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भी इसके ऊपर टीका लिखी है, उसका नाम है शारीरिक भाष्य, उसमें शरीर के स्तर की बात की गई है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे हुए भाष्य को पढ़ेगा, शारीरिक भाष्य को पढ़ेगा, सुनेगा, इस मायावाद के बारे में सुनेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। मायावाद भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश, उसका नाश हो जाएगा, वो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने अब इसको सूत्रबद्ध कर दिया। अब सूत्रबद्ध कर दिया, इन्होंने सोचा कि भाई ये तो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे वही समझ पाएंगे, बाकी लोगों का क्या होगा, शूद्रों का क्या होगा। और कलयुग में तो जन्म ना जाए थे शूद्रा, जन्म से सारे शूद्र हैं, स्त्रियों का क्या होगा, इसलिए ज्यादा फिलोसफिकल चक्कर में फंसेंगे नहीं, उनको तो कुछ रोचक चाहिए तभी वो पढ़े। बोले इन सबको ये सिद्धांत कैसे पता चलेगा। तब उन्होंने बड़ा विचार किया और विचार करने के बाद महाभारत की जो है रचना करी। वास्तव में रचना क्या करी, वो जो इतिहास था उसको लिखा, उसको पूरा सर्च करके रिसर्च करके उस इतिहास को महाभारत के रूप में लिखा। और उसी में क्योंकि उनको पता था कि ये एक ऐसा एपिक है, ऐसा हिस्ट्री है महाभारत की जो है, इसके अंदर सारे सिद्धांत भी क्लियर हो जाएंगे और सबको पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा, है ना। उसमें कहीं सबको, किसी को पॉलिटिक्स चाहिए तो महाभारत में दबा के पॉलिटिक्स भरी हुई है, रोमांस चाहिए तो रोमांस है, जहां जहां जाते अर्जुन वहीं शादी कर लेते हैं, अर्जुन जहां जहां ट्रेवल करते हुए जाते थे वहां एक दो शादी कर लेते थे, अद्भुत। फाइट चाहिए तो फाइट तो पूरी फाइट ही फाइट है उसमें, हर चीज है उसमें। और साथ ही साथ उसमें कुछ कृष्ण लीला भी है। और उत्तरखंड में भीष्म पर्व के, उत्तरखंड के भीष्म पर्व में भगवद गीता भी है। और वो भगवद गीता भी जब हमारे को प्राप्त होगी तो व्यास देव जी ने सोचा कि इस प्रकार से लोगों का उद्धार हो जाएगा। और ये सब करने के पश्चात व्यास देव जी बड़े, सब कुछ कर दिया उन्होंने यहां बैठ करके, सब कर दिया, पर उनका हृदय खाली खाली सा उनको लग रहा था, कुछ कमी है मेरे अंदर। वो अपने आप में डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। कभी कभी हमारे साथ ऐसा जीवन में होता है ना कि हमें लगता है कुछ तो कमी है, समझ नहीं आ रहा, पर होता है ना ऐसा, क्या प्रॉब्लम है नहीं समझ में आता, पर ये समझ में आता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, होता है ऐसा कि नहीं होता? यस नो। तो व्यास देव जी की भी स्थिति ऐसी, पर व्यास देव जी सोचने लगे, यार मैं तो व्यास देव हूं, कितना बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैंने पुराण लिखे, मैंने क्या नाम है इतिहास लिख दिया, महाभारत मैंने, वेद और वेदांत सूत्र लिख दिया, इतना कुछ कर दिया मैंने, उपनिषद लिख दिए, ब्राह्मण लिख दिए, आरण्य लिख दिए, आगम लिख दिए, और मैंने क्या नाम है संहिताएं लिख दी, इतना कुछ लिख दिया मैंने लोगों के उद्धार के लिए, मुक्ति तक का मैंने उसमें पथ बता दिया, पर मैं इतना डिसकंटेंट क्यों फील कर रहा हूं? बहुत दुखी हो गए, दुखी होके बिल्कुल निराश हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब वो इस प्रकार की परिस्थिति में थे तब वहां श्री नारद जी जो है वास्तव में जगत गुरु हैं। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व के किसी भी कोने में जाके ट्रेवल करते हैं, नित्यानंद राम प्रभु का स्वागत करते हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बड़ा ही डिसकंटेंट फील कर रहे थे, सोचे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब नारद जी वहां आए। नारद जी जो है गुरु हैं व्यास देव जी के, नारद जी जगत गुरु हैं तो वैसे ही व्यास देव जी के भी गुरु हैं। और गुरु अपने शिष्य की कमियों को दूर करने की हमेशा चिंता करता है, हमेशा चिंता करता है। और आते ही नारद जी ने व्यास देव जी को बोला, क्या हुआ? बोले बस समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहां से आएगा, क्या किया तुमने? बोले मैंने वेद लिखे हैं। बोले वेद में तो तुमने कितना वर्णन किया है कर्म कांड ज्ञान कांड। बोला हां। भक्ति के बारे में वर्णन किया है? बोला किया है थोड़ा सा, पर वो तो तुमने जो किया है थोड़ा सा वेदों में वर्णन, वो तो चारों तरफ से ज्ञान कर्म इत्यादि से भरा हुआ है। ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड अमृत बोलिया जेवा खावे नाना योनि सही फिरे कंधे रब भक्षण करे। अरे जो व्यक्ति केवल कर्म कांड और ज्ञान कांड में फंसा रहेगा क्या उसकी गति होगी? एक प्रकार से विष के समान है, जबकि ये शास्त्र अपने आप में विष के समान नहीं है। हम इन शास्त्रों की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे दोबारा, पर प्राइमरीली इनमें यही डिस्कशन है, क्या तुमने भक्ति के बारे में जो सबके हृदय को असली आनंद देने वाली उसका वर्णन किया है डिटेल में? तो नहीं। अरे भागवतम में इसलिए लिखा हुआ है नहीं, भागवतम में लिखा हुआ है योग आदि भी योग पथ है, कर्म आदि भी योग पथ है, ध्यान आदि भी योग पथ है, काम लोभ हताम हूं। अरे ध्यान, योग, कर्म, ज्ञान इत्यादि निश्चित रूप से काम और लोभ पे विजय प्राप्त करने में सहायता करते हैं, पर मुकुंद सेवया यद्वा उस प्रकार से आत्मा को संतुष्टि नहीं प्रदान करते, उस प्रकार से आत्मा को संतुष्टि नहीं प्रदान करते जैसी संतुष्टि किसी जीव को मुकुंद के चरणों की सेवा करके होती है। कौन है मुकुंद? कौन है मुकुंद? कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मुकुंद का मतलब होता है मुकुंदा, जो मुक्ति देने वाले हो, मुक्तिदा, जो मुक्ति देने वाले हैं उनको मुकुंद कहते हैं। और गौड़िया वैष्णव कहते हैं क्योंकि ब्रज में एक फूल उगता है, उसका नाम है मुकुंद, कुंदा। ब्रज में एक फूल उगता है, उसका नाम है कुंदा, कुंदा फ्लावर। श्रीला प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में वर्णन करते हैं कुंदा फ्लावर। और जिनका मुख कुंदा फ्लावर के जैसा हो, जो कि केवल ब्रज में उगता है, उनका नाम है मुकुंद। तो जब तक कोई व्यक्ति उनके चरणों की सेवा ना लगे, कैसे उसको शांति मिलेगी? बोला हाँ, तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले कि अच्छा, तुम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो, तुमने महाभारत वगैरह लिख दी, कहीं पे तुमने घोषणा करी सीधे सीधे कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण परम भगवान है, बाकी सब उनके अवतार अंशावतार इत्यादि है। यहां बातें मत करो पीछे प्लीज। कहीं पे वर्णन किया? बोले मैंने बताया कई जगह पे। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया? बोले नहीं। बोले कहीं पर तुमने वर्णन किया कि कृष्ण को संतुष्ट केवल ब्रज भक्ति के द्वारा किया जा सकता है, पूर्ण संतुष्टि उनको ब्रज वासियों के प्रकार, ब्रजवासियों के अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए भक्ति करके श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण प्रसन्न किया जा सकता है? बोले नहीं बताया। बोले फिर तुमने किया क्या? अपने आपको इतना बुद्धिमान समझ रहे हो, क्या किया है तुमने? और बहुत डांटा उन्होंने व्यासदेव जी को। तो अब ये जब डांट रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कई बार देखते हैं कि गुरु जो है शिष्य को डांटते हैं, डांटते हैं कि नहीं डांटते? पर सब शिष्यों को नहीं डांटते, किसी किसी शिष्य को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि गुरु उसको डांटे। गुरु बोले तुम गधे हो, तुमने क्या किया है, यूजलेस हो। गुरु ऐसे शब्दों का उच्चारण करे। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो गुरु फ्लैटरिंग करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हो, अच्छा आपका लाइफ चल रहा है, वेरी गुड, चैंटिंग हो रही है, यस प्रभु महाराज हो रही है, ओ थैंक यू। सो ये जो लाइफ होती है इतनी जबरदस्त नहीं है। वो गुरु के साथ असली रिलेशन क्या है कि गुरु अधिकार समझ के चार गाली दे सबके बीच में। जब गुरु ये करे, देखो कितनी पब्लिक के बीच में गाली दी जा रही है, फुल ब्रॉडकास्ट हो गया कि व्यास देव जी को डांट पड़ी, हैवी ब्रॉडकास्ट। तो जब गुरु डांटते हैं तो गुरु केवल उस शिष्य को डांटते हैं जिसको वो जानते हैं कि ये सिंसियर है, और जिसको वो जानते हैं कि ये मेरा व्यक्ति है। हर व्यक्ति को गुरु नहीं डांटेंगे। गुरु को पता है कि अगर मैं इसको डांटूंगा तो भी ये छोड़ेगा नहीं मुझे, शिला प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ेगा, कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ेगा, उसी को डांटेंगे। हर किसी को गुरु की डांट नहीं पड़ती। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है। तो हमारे को अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझना चाहिए यदि हमें अपने गुरु से कुछ प्रेज मिली। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज, जानते हैं भक्ति तीर्थ महाराज? भक्ति तीर्थ महाराज श्रील प्रभुपाद जी के एक अग्रगण्य शिष्य थे, जो कि प्रभुपाद जी के समय पे पुस्तक वितरण भी करते थे। उस समय उनका नाम था घनश्याम दास। तो प्रभुपाद जी जब अपने फाइनल डेज में थे, प्रभुपाद को तभी सुख होता था जब वृंदावन में भक्ति तीर्थ महाराज का लेटर आता था और उसमें रिपोर्ट लिखी होती थी, रिपोर्ट लिखी होती थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, और प्रभुपाद जब उसको सुनते थे तब प्रभुपाद सबसे ज्यादा खुश होते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज कई बार जब लेटर, दूसरा लेटर आने में टाइम लग जाता था, सेम लेटर दो तीन बार रिपीट करके प्रभुपाद को सुनाते थे। हफ्ते में दो बार वही लेटर सुना देते थे। तो प्रभुपाद जितनी बार उसको सुनते थे हर बार खुश होते थे, आनंद से भर जाते थे और हमेशा बोलते थे दिस बॉय इज एक्सीलेंट, दिस बॉय इज वेरी प्योर, बहुत कुछ बोलते थे भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में। तो एक दिन क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी अपने फाइनल पास टाइम में ही लास्ट टाइम लंदन के लिए गए। जब प्रभुपाद जी लंदन गए, बहुत स्वास्थ्य खराब था, जब वहां गए तो उसी समय घनश्याम दास जी भी वहीं पहुंचे अपनी रिपोर्ट लेके, और तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि इस बार तुम्हारी रिपोर्ट हम नहीं पढ़ेंगे, आप डायरेक्ट पढ़ो, तो प्रभुपाद और खुश होंगे। तो घनश्याम दास मतलब भक्ति तीर्थ महाराज अंदर गए तो वहां प्रभुपाद जी किसी के साथ बैठे थे, और प्रभुपाद जैसे ही अंदर गए, क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज ने बोला था कि मैं घनश्याम दास को भेज रहा हूं, जैसे ही अंदर गए तो वो दूसरे भक्त से प्रभुपाद जी ने बात करना शुरू कर दी। तो ये बोले, प्रभुपाद जी से बोले कैसे आए अंदर, बोले प्रभुपाद वो रिपोर्ट सुनानी थी आपको। प्रभुपाद जी बोले बोलो, और इनको सुनने के बजाय प्रभुपाद वापस उनसे बात करने लग गए, और बार बार इस प्रकार से प्रभुपाद दिखा रहे थे कि जैसे कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। तो फाइनली वो रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, और प्रभुपाद ने बोला ठीक है जाओ। हाँ, कृष्णा इज द डूअर, प्रभुपाद ने बोला यस ओके कृष्णा इज द डूअर, और उनको वापस बाहर भेज दिया। तो कितना कष्ट होगा सोचो, गुरु ऐसा व्यवहार करें, इग्नोर ही कर दें आपको, कितना कष्ट होगा, है ना। हम जनरली रहते हैं गुरु स्नेही, जब तक गुरु हमारे को पुच्छा पुच्छा करता रहे, मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरी जलेबी, मेरा गुड़, तब तक ठीक है। पर जिस दिन गुरु जी ऐसा करते तो हम कहेंगे है ना, पैसा दे के रखा था क्या। तो अब यहां पर जब ये बाहर गए भक्ति तीर्थ महाराज, तो ये बोले श्रीमद राधानाथ महाराज जी को कि आज तक सब लोग मुझे बोलते थे कि प्रभुपाद जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, प्रभुपाद आपसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं, पर आज मुझे वो सब असली कृपा नहीं थी, पर आज मुझे ये जो है प्रभुपाद जी की असली कृपा मिली कि प्रभुपाद ने मुझे अपना मान के मुझे इग्नोर किया और मुझे लेसन दिया कि आई एम नॉट द डूअर, कृष्ण इज द डूअर। तो ये जिसको प्रभुपाद अपना समझेंगे कि ये वास्तव में मेरा ही है, उसी को डांटेंगे और किसी को नहीं डांटेंगे। तो ये सौभाग्य है, गुरु केवल किसको डांटते हैं, सिंसियर डिसाइपल को, किसको, सिंसियर डिसाइपल को। अब नारद जी ने जब इतना इनको डांट फटकार लगाई तो व्यासदेव जी ने सोचा बिल्कुल ठीक बात है। तब व्यासदेव जी जो है फिर से मेडिटेशन में बैठे, अब उनको क्या करना था, भागवतम लिखनी थी। व्यासदेव जी नारद जी बोल के गए कि भागवतम लिखो, तो वो मेडिटेशन में बैठे उन सारी सुफूर्तियों को प्राप्त करने के लिए भगवान से। जब वो बैठे तो उन्होंने क्या देखा, कुछ देर के बाद साक्षात भगवान जो है श्री हरि उनके सामने प्रकट हो रहे हैं, वो प्रकाश है, और भगवान के पीछे ही बिल्कुल छुपी हुई है कौन, माया देवी। कौन छुपी हुई है, माया देवी, और वो शर्मा रही है, माया देवी शर्मा रही है, इसलिए भगवान के पीछे छुपी हुई है। क्यों शर्मा रही है, क्योंकि उसको क्या कार्य करने हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना करें उनको विमुख करके उनको पाप कार्यों में रत करना है, जिससे कि फिर वो कर्मों के फल भोगें, कष्ट उठाएं यहाँ पे, और समझ में उनको आए कि भगवान की सेवा में उन्हें लगना चाहिए। तो एक बार को उनको विमुख करना पड़ता है लोगों को, कि तभी तो अधर्म में लगेंगे। जनस्य कृष्णा विमुखस्य दैवात, जब तक कोई व्यक्ति दैववश ऐसी माया के द्वारा कृष्ण से विमुख नहीं होगा, अधर्म शीरस्य सुदुखितस्य, तब तक वो अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा, तब तक वो कष्ट उठाएगा नहीं, और जब तक वो कष्ट उठाएगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसको करना क्या था। कई बार बच्चों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है ना, बच्चे जब नहीं समझते तो उनको करने देना पड़ता है, जब उनके एक बढ़िया से लगती है, चोट लगती है, थोड़ा कष्ट होता है, तब कहते हैं बेटा आई समझ में बात, समझ आ जाता है। तो वैसे ही माया देवी को कार्य करना पड़ता है, तो इसलिए माया देवी पीछे, इसलिए बताया जाता है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झापटिया धरे। इसका अर्थ क्या है कि जरा से हम कृष्ण को भूले, भोग करने की इच्छा जागृत करी, इमीडिएटली माया पकड़ लेगी, झपट के पकड़ लेगी, क्योंकि साथ में ये पीछे ही एकदम झपट के पकड़ लेगी। और इसका दूसरा मतलब क्या है, जैसे कोई भोग वांछा करता है माया क्या करती है, उसको कॉलर पकड़ के देख मारती है, झापटिया धरे, एक झापड़ धरती है। और फिर माया देवी क्या करती है, जब झापड़ देती है, फिर कहती है मेरा बच्चा, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, फिर उसको गोद में लिटाती है। उसको कहता है कितना सॉफ्ट सॉफ्ट माँ का गद्दा, गद्देदार माता के को गोद, आहा मेरा बच्चा, पुचकारती है, फिर ऐसे करती है मेरा बच्चा, फटाक, फिर कहती है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाँ वो उठता है, फिर जब तक वो संभलता है, फिर कहती है मेरा बच्चा, मेरा चुन्नू, मेरे लिए जलेबी खा ले। फिर जब जलेबी उसकी जैसी मुंह में जाती है, हल्का सा टेस्ट होता, फटाक, पूरा टाइम लॉलीपॉप मुंह में, फिर मुंह हाथ से ले बेटा, फटाक ले बेटा, ले ले। माया देवी ऐसा रुला के रख देती है, इसलिए कभी क्या होता, कभी लगता है सुख आ गया, जैसे लगता है थोड़ा सा सुख आया, अचानक एक झटका आता, फटाक से डंडा पड़ता है, होता कि नहीं होता, सही बोल रहे गलत, ये माया देवी की सेवा। तो इससे बचने के लिए आदमी को हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा कि हम किसके दास है, किसके दास हैं, किसके दास हैं। हमने दो दिन पहले क्या डिस्कस किया था, डायरेक्ट कृष्णदास बनोगे, डायरेक्ट कृष्ण के। भक्तों के साथ क्या होता है, जब वो शुरू शुरू में आते हैं तो उनको बोला जाता है भक्त प्रवीण सिंह, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो बन जाता है पद कमल प्रभु, कोई प्रद कमल जिसका नाम हो, बुरा नाम है नाम आ गया, पद कमल प्रभु बन जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद तुमको लगता है प्रभु बन गया, क्योंकि नाम में दास दिया होता है, लोग प्रभु बुलाते हैं, तो जो नाम है वो भूल जाते हैं, क्या याद रह जाता है, प्रभु। और फिर उसको दिखता है ये भी प्रभु, ये भी प्रभु, ये भी प्रभु, ये भी प्रभु, मैं भी प्रभु, हम सब प्रभु, और ये जो है ना ये दूसरे लोग, ये सब दास, ये पीछे वाले सारे जो ऊपर बैठे हैं सब दास। अब फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद उसको जब थोड़ा प्रचार करता है, थोड़ी सेवा करता है, तो उसको लगता है मैं ही केवल प्रभु, क्योंकि सब उसको प्रभु कहते हैं, वो सबको क्या बोलता है, गिरधारी, अरे रामेश्वर गिरधारी उठो, अरे बोल क्या करो ऋषिकेश उठो। तो अब प्रभु तो बाकी लोग रह नहीं जाते, जो प्रचारक होता है वही प्रभु हो जाता है, क्योंकि सब उसको बोलते हैं प्रभु जी, उसको लगता है कि ये सब दास और मैं प्रभु। और जब ये स्थिति आ जाती है ना, तो फिर सब उसकी जब सेवा बढ़ने लगती है, आनंद होने लगता है जीवन में, तो उसको एक दिन क्या लगता है कि मैं महाप्रभु। इसीलिए किसका दास बनना है हमें, भगवान के दासों का दास, तद भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य तद भृत्यस्य भृत्य परिचारक, उनके दासों के दासों के दासों का दास बन करके, दासों के दासों, ये महाराज कुलशेखर ने लिखा है, इतनी बार बोला है, तद भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य, उनको तो मतलब मौका मिल जाता तो वो पूरी किताब में यही लिख देते, उनके भृत्य के, उनके भृत्य के, उनके भृत्य के, उनको पता है भैया इस श्लोक को इतने वर्ड्स में पूरा करना है, तो इसलिए उन्होंने खत्म कर दिया, दास 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 दास। हम एक बार, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम एक मीटिंग में बैठे, वहां पे एक व्यक्ति था, मतलब बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, थोड़ा सा थोड़ा पावरफुल व्यक्ति है अपने एरिया में, धनी भी है। तो हम थे शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ, तो वो बोलने लगे महाराज आप तो सुप्रीम अथॉरिटी हो वहां पर, हम दास हैं। बोले हमने तो सुना बीबीटी के वो चेयरमैन वगैरह हो, महाराज बोले मेरा केवल एक ही वोट है वहां पे, मैं अकेला आदमी हूं, दास हूं। वो बोलने लगा देखिए महाराज हम तो अपने क्षेत्र के भगवान हैं। महाराज बोले हम तो दास हैं, भक्त किसी भी कंडीशन में अपने आप को दास ही बोलता है, और दास बोलता नहीं है, दास मानता है, ऐसा नहीं प्रभु जी मैं तो आपका दास हूं, अच्छा प्रभु कल सुबह थोड़ा मंगला आरती में हमारे साथ हेल्प करने आ जाना, थोड़ा 4 बजे आ जाना, व्यवस्था करानी है, इतनी जल्दी थोड़ा उठ सकते हैं प्रभु जी, मैं तो आपका दास हूं ना। दास का मतलब होता है फिर दासत्व को स्वीकार करें, भक्तों की आज्ञा का फिर पालन करें। तो हमारे को भक्तों के दासों का दास बनना है, श्री कृष्ण के दासों का दास, और फिर माया देवी कभी पंगा नहीं डालेगी हमारी लाइफ में, ठीक है ना। नहीं तो माया तैयार खड़ी है, यहां से जहां से मौका मिलेगा हमारा एक वीक पॉइंट होगा ना, और माया देवी इतनी पावरफुल है वो जानती है हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, वहीं जाके डंडा बजाती है, वहीं। जैसे फाइट होती है तो जिस अपोनेंट अपोजिट पार्टी होती है वो ये पहले चेक करती है ना इसका वीक पार्ट कौन सा है, वहां पे मारते हैं। पर माया देवी को चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है और वो हमारे वीक पॉइंट पे अटैक करेगी। पर अगर हम भक्तों के संग में होंगे, उनकी सेवा में होंगे, तो भगवान जो हमारा वीक पॉइंट है ना, भक्त लोग उसको स्ट्रांग कर देंगे, है ना। बार बार बोलेंगे चेंज करो चेंज करो चेंज करो, प्रभु जी गड़बड़ है, चेंज करो चेंज करो। तो हमारे को हमेशा पता रहेगा एटलीस्ट ये हमारा वीक पॉइंट है, तो हम वहां पे सतर्क हो जाएंगे। अगर हम स्ट्रांग नहीं भी हो पाए तो अपने वीक एरिया में हम क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, फिर माया देवी हमारे पर इतनी जल्दी प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अब ये सब करने के पश्चात व्यास देव जी ने जब भगवान रिवील किए अपने आप को, तब श्रील व्यास देव जी ने श्रीमद भागवतम की रचना करना शुरू करी। और भागवतम की उन्होंने सोचा कि भैया पहले मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी है, पहले 3 श्लोकों में सारी भागवतम को क्लियर कर दूंगा मैं, पहले 3 श्लोकों में पूरी भागवतम क्लियर। स्टार्टिंग क्या करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 1 लाइन में सबसे पहले क्लियर कर दिया कि परम भगवान कौन है, वासुदेव। वासुदेव किसके पुत्र हैं, वसुदेव जी के। और यहां पर और क्लियर किया इन्होंने वसुदेव, जो वसुदेव जी हैं जो मथुरा में जहां पे भगवान ने जन्म लिया वो नहीं बोले, वासुदेव एक क्या नाम है, वसुदेव एक नाम है इनका भी, वसु नाम है, नंद महाराज का एक नाम है वसु। तो पहली लाइन में क्लियर कर दिया नंद नंदन कृष्ण क्या है, भगवते, नंद नंदन कृष्ण जो है भगवान है। इन्होंने इस प्रकार से शुरू किया क्योंकि अब इन्होंने स्थापित करना है। और इनकी इसके ऊपर जो कमेंट्री करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहले भागवतम पे जो कमेंट्री करने वाले व्यक्ति हैं कौन है बताइए, कौन है, श्रीधर स्वामी, कौन, श्रीधर स्वामी जी। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि ये स्वामी है, मेरे भी स्वामी है, इतना सम्मान किया। और उन्होंने अपनी कमेंट्री पता कैसे शुरू करी है, देखिए कितना अद्भुत है भक्त लोग, क्योंकि व्यास देव जी को तो सिद्धांत प्रस्तुत करना है, भक्त लोग अपनी पोजीशन के साथ चलते हैं। उन्होंने कैसे स्टार्टिंग करी है, ओम नमो भगवते, नहीं इन्होंने शुरू किया है, ओम नमो भगवते, बहुत सुंदर किया, मुझे अचानक माइंड से स्किप हो गया। ठीक है बाद में जब याद आएगा बोलेंगे। तो इन्होंने जिस हिसाब से शुरू किया उसमें वो क्या कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते चरण चिन्ह मकरंदाया भक्त जन्म भक्तों के, हाँ तो ओम नमो भगवते, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जिनके चरणों की रज और मकरंद जो है, चरण चिन्हों की जो मकरंद है निरंतर उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा आस्वादित है, और इस प्रकार से भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं और आस्वादन करते हुए भगवान को अपने हृदय में विराजते हैं। ओम नमो भगवते फिर निकल गया, चलो ओम नमो भगवते भक्त जन छोड़ो आई नहीं रहा माइंड, जीप पे नहीं आ रहा, बहुत सुंदर है, बहुत लंबा है वो,
कभी कभी ऐसा हो
जाता, बहुत लंबा है और बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से उन्होंने शुरू किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहले ही लाइन में स्टैब्लिश कर दिया परम भगवान है नंद नंदन वृंदावन बिहारी श्री कृष्णा। और अब इमीडिएटली डेफिनेशन भी दे दी कि भगवान जो नंद नंदन भगवान है वो है क्या, क्या शक्तियां हैं उनकी, करते क्या हैं, इमीडिएटली शुरू कर दिया। जन्मादयस्य यतः न व्याधितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूयः तेजो वारि मृदाम विनिमय यथा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निहस्त कुहकम् सत्यम् परम धीमहि। परम सत्य भगवान श्री नंद नंदन कृष्ण के चरणों पर मैं ध्यान लगाता हूं। और क्या ध्यान लगाता हूं, कैसे हैं वो? जन्मादयस्य यतः, हर चीज आध्यात्मिक जगत की हो चाहे भौतिक जगत की हो, जड़ हो अथवा चेतन हो, हर चीज के आदि कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जन्मादि हर चीज के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। जन्मादि यस्य यतः अनव्याधितरतश्च अर्थेषु, और हर चीज के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज से वो अवगत है, हर चीज से वो अवगत है। और इस सृष्टि के हर चीज के अर्थ, उसका पर्पस क्या है, उसके लिए वो अभिज्ञ है। और ऐसे अभिज्ञ है, अभिज्ञ मतलब ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एंड ही नोज एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू कम इन एग्जिस्टेंस। और पीछे मत देखिए, ये आवाजें आती रहेंगी, स्पीकर की आवाज सुनिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, यहां से लोग आते जाते रहेंगे, वहां पे लोग बोलते रहेंगे। क्या बता रहे थे हम? तो वो अभिज्ञ है, पर साथ ही साथ क्या है, वो स्वराट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तेना ब्रह्म हृदयादि कवये मोयन्ति यत् सूर्यः, और उन्हों वही आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान स्थापित किया, अपनी मुरलीवाद से उन्होंने गायत्री मंत्र जो है ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया। और फिर इसके पश्चात ऐसी ऐसी रचना कर दी इस भगवान, इन भगवान ने, कि बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि बुद्धिजीवी लोग भी बिफिल्डर हो जाते हैं। मोयंति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम विनिमय यथा, अरे कहीं पर पृथ्वी पे आग लगती लगी नजर आती है, कहीं पानी पे आग लगी हुई नजर आती है, कहीं पर लोग अपने रिलेशनशिप को ही इटर्नल मानने लगते हैं, कहीं पर लोग जो सत्य होता है उसको असत्य मानते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं। ऐसी माया शक्ति के द्वारा भगवान ने ये जगत की रचना करी है, और उसके कारक भी कौन है? स्वयं भगवान है। और इसके कारण बड़े बड़े देवी देवता बुद्धिजीवी ऋषि मुनि भी विविल्डर हो जाते हैं, ऐसे भगवान है। तिसर्गो मशा, और यही भगवान निरंतर कहां रहते हैं? धामना स्वेन निहस्त कुरुकम सत्यम परम धीमहि, अपने ऐसे धाम में रहते हैं जहां पे किसी प्रकार की कोई कुंठा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। पहले ही श्लोक में क्लियर कर दिया, दूसरे श्लोक में फिर क्लियर कर दिया। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वसतु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरे सद्यो हृदय वृद्धते त्रिकृतभि शुशुश्रुभिः तत्क्षणात्। क्या बोलते हैं स्टार्टिंग करते ही, जैसे ही इन्होंने क्लियर कर दिया कौन भगवान है, इमीडिएटली बोलते हैं धर्म प्रोजित कैटव, जो कैटव धर्म है, ज्ञान योग कर्म ये वो, धर्म का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन, इस धर्म का पालन, पति धर्म का पालन, पत्नी धर्म का पालन, बच्चे के धर्म का पालन, ये सब कैटव धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कैटव है, कैटव मतलब कपट, कपट धर्म है ये सब, प्रटेंशियस। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया प्रटेंशियस रिलीजन, दिखावे का रिलीजन है सब। तो स्टार्टिंग करते ही बोल रहे धर्म प्रोजित कैटव, प्रोजिता, ओजिता मतलब इसको निकाल दिया, और प्र मतलब पूरी तरह से उठा के बाहर निकाल दिया भागवतम से। भागवतम में किसी प्रकार के कैटव धर्म की चर्चा नहीं होने वाली है, जो उन्होंने और पुराणों इत्यादि में फिर भी कर दी है लोगों को धीरे धीरे इस लेवल पे लाने के लिए। परंतु जैसे वेदों में हमने बताया ना, कोई निंदा नहीं है, वेद व्यास जी ने वेद पुराणों में और जगह जगह पे अलग अलग कर्म कांडों के वर्णन इसलिए किया है कि लोग उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप बताओगे लोगों को कि आपको बैठ करके सुंदर से हरि नाम का जप करने से सब मिल जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगी। उनको आप कहोगे जाओ भैया यहाँ से चढ़ाई करो 14 किलोमीटर के ऊपर, फिर वहां जाके मत्था टेक के पानी चढ़ाना, फिर नीचे आना, फिर जो कुछ मिला वो करेगा, हाँ भैया मेहनत करिए मैंने, कुछ तो मिलेगा। तो क्योंकि लोग करना चाहते हैं, लोग कन्विंस उसी से होते हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो उनको धीरे धीरे उस स्तर पे लाने के लिए कि उनको समझ में आ जाए कि असली चीज भक्ति है, तो उन्होंने अलग अलग पुराणों में सब दिया है। पर क्या बोल रहे हैं व्यास देव जी, भागवतम से मैंने इमीडिएटली सब कुछ उठा के बाहर कर दिया है। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। और इसका आस्वादन पूर्ण रूप से तो केवल वही कर पाएंगे जो पूरी तरह से ईर्ष्या द्वेष से रहित है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। इसको ऐसा बोला मुझे ऐसा नहीं बोला, इसको सम्मान मिला मुझे सम्मान नहीं मिला, वहां पर उसके पास सब कुछ है मेरे पास क्यों नहीं है, भगवान ही सब कुछ क्यों करे, भगवान ही भगवान क्यों, मैं क्यों नहीं भगवान। छोटी छोटी बातों पे हम दूसरों से ईर्ष्या कर उठते हैं। तो जब तक हमारी ये रहेगी, भागवतम हमारे को ऊपर तब भी कृपा करेगी, परंतु हम इसका असली आस्वादन नहीं कर पाएंगे। परम निर्मल सत्वम वेद वास्तव मत्र वसतु शिवदम तापत त्रयोन्मूलनम। ये श्रीमद् भागवतम तीनों तापों का उन्मूलन कर देती है, निकाल के फेंक देती है। जो तीन ताप हमें सताते हैं, तापत त्रय क्या है वो, आज भौतिक आदिदेवी का है ना अध्यात्मिक, उनका जड़ से नष्ट कर देती है। क्योंकि वेदों का जो वास्तविक अर्थ है इसके अंदर बताया गया, बल्कि वेद्यो वास्तव मत्र, जो वस्तु है वास्तव वस्तु है। वस्तु का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस, रियल सब्सटेंस जो है, वास्तव जो है वो क्या है, रियल सब्सटेंस कोई है तो वो है कृष्णा, वो है वास्तव वस्तु, उनके बारे में चर्चा होने वाली है। इसीलिए सारे तापों को निकाल के फेंक दिया श्रीमद् भागवतम ने। फिर आगे क्या बोलते हैं, वेद्य वास्तव मत्व श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ऋषिवरा। अरे साक्षात व्यास देव जी, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो इस बात को बोल रहे हैं। व्यास देव जी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखे हैं सारे वेद पुराण शास्त्र इतिहास इत्यादि, अब मैं इस बात को बोल रहा हूं कि इस ग्रंथ को जो पढ़ना शुरू कर दे उसको अन्य ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा हुआ, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम की। और फिर आगे क्या बोलते हैं कि सद्यो हृदय वृद्ध तेत्र कृत भी शुश्रु भी तत्क्षण। जो भी व्यक्ति सेवा भाव से, क्योंकि मेरे मन में इसका अर्थ सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि सद्यो सद्यो हृदय वृद्ध तेत्र कृत भी शुश्रु भी तत्क्षण, कि इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू करेगा, सुनना शुरू करेगा, सुनते ही क्या होगा, तत्क्षण सद्यो इमीडिएटली, तत्क्षण जल्दी ही, तत्क्षण इमीडिएटली क्या होगा, उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं श्री गोपी परांधन प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि मैं भागवतम पढ़ लिया हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे हृदय में तो कृष्ण नहीं आ रहे तत्क्षण। और कई लोग भागवतम पढ़ रहे हैं और उनके चरित्र से लगता नहीं है कि उनके हृदय में कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। तो प्रभु जी ने बोला, गोपी प्राणधन प्रभु कह सकते हैं कि हमारे इस्कॉन में दो तीन जो वैष्णव हैं, उनमें से एक हैं जिसको हम कह सकते हैं भागवतम पे अथॉरिटी। तो प्रभु जी बोले, शुभ आपने ध्यान नहीं दिया, सेवा की भावना के साथ करना पड़ेगा। हा? सेवा की भावना से जब हम भागवतम का श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तब कृष्ण इमीडिएटली आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और जब आप पहले दो कैंटो पढ़ लोगे तो भगवान के चरण आपके हृदय में प्रकट होंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, कृष्ण का श्री विग्रह पूर्ण रूपेण आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। यह है श्रीमद् भागवतम। सेवा की भावना से कि श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी बार बोला है कि ग्रंथों को पढ़ो तो श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, श्री गुरुजन प्रसन्न होंगे, इस भावना को लेके कि हमें इनको प्रसन्न करना है। हम जब भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे हृदय में कौन प्रकट होंगे? श्री कृष्ण। क्लियर कर दिया दूसरे श्लोक में। और तीसरे श्लोक में क्या बोलते हैं? निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवत रसम माल्यम मुहु रहु रसिक भूभि भावु का। सबसे पहले क्लियर कर दिया कि अगर आप असली श्रीमद भागवतम का आस्वादन करना चाहते हो तो आपको भगवान के भक्तों के चरणों में बैठ के इसका श्रवण करना पड़ेगा। जबकि ये श्रीमद भागवतम सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है और श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण और मीठा हो गया है, क्योंकि शुक का एक अर्थ क्या होता है? तोता। और कभी आप कभी कोई फल खाए हो जिसपे तोते ने मुंह मारा है तो आपको पता लगेगा कि वो मीठा होता है, विशेष रूप से कई बार अमरूद मिलते हैं ऐसे, बहुत मीठा होता है वो। तो अब क्या है, ये श्रीमद भागवतम तो वैसे ही बड़ी मीठी थी, अब इस पे चोंच किसने मार दी? श्री सुखदेव गोस्वामी ने। तो इसकी मिठास कई गुना बढ़ गई। निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत दव्य संयुतम। और ये अब ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण और अमृतमय हो गया है, और मीठा हो गया है। और क्या बोल रहे हैं कि आओ ये सारे रसों का सार, अगर आप फिलॉसफी की बात कर रहे थे अभी तक तो हम सिद्धांत की बात कर रहे थे कैटव धर्म की, पर ये श्रीमद भागवतम क्या है? रसमाल्यम। जितने भी रस हैं जिनका हम आस्वादन करना चाहते हैं, जिसमें विभत्स, हास्य, विनोद, क्रोध, भय, और क्या नाम है श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, पति पत्नी का रस, ये जितने भी रस हैं यहाँ पे तो विकृत रूप से हैं, दूषित रूप से हैं, वो अपने शुद्ध रूप में इस श्रीमद भागवतम के अंदर विराजते हैं। और आदर आलय का एक अर्थ होता है जहां पर आके सारे रस अपनी पूर्णता को प्राप्त करें, जहां पर आकर लय हो जाए। ये सारे रसों का घर है श्रीमद भागवतम। और अब क्या करो, रसिक भूमि भाविका, असली असली आस्वादन करने के चाहते हो तो इसको प्रेम की आंखों से पढ़ो, सुनो भक्तों से। जब तक भक्तों के मुख से सुनेंगे नहीं तो वो भाव जो भक्तों के हृदय में है हमारे हृदय में आएगा नहीं। इसीलिए भक्तों के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करके और उनके साथ क्या करो, बोधयंतस्य परस्परं कथयंतस्य मां नित्यं। कृष्ण कहते हैं मेरी चर्चा करो, और उनकी चर्चा क्या है? श्रीमद् भागवतम। पहले तीन श्लोकों में ही सब कुछ क्लियर कर दिया। और ये श्रीमद् भागवतम, जैसे हम पिछले दो तीन दिनों से श्रीमद् भागवतम का गुणगान सुनते आ रहे हैं सनातन गोस्वामी के श्लोकों के माध्यम से, अब ऐसा अद्भुत श्रीमद् भागवतम इन्होंने रचित कर दिया। रचना करने के बाद इनके हृदय में इच्छा हुई कि कोई व्यक्ति मुझे मेरे पास होना चाहिए जो शुद्ध भाव से, जिसके हृदय में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ना हो, जिसके हृदय में कोई अन्य भावना ना हो कर्म, ज्ञान इत्यादि के प्रति, शुद्ध भक्ति हो केवल, ऐसा मुझे कोई व्यक्ति मिले जो कि इस श्रीमद् भागवतम का क्या करे, प्रचार करे। और इसके लिए इन्होंने विचार किया कि कितना अच्छा हो यदि श्री कृष्ण मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो कि इस भागवतम का प्रचार करे। तब श्री व्यास देव जी ने तपस्या करना शुरू करी हरि नाम लेते हुए, और भगवान के चरणों में निवेदन करना शुरू किया कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इस भागवत का प्रचार कर सके, जो इस भागवतम की शोभा बढ़ाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। फिर हम देख जानते हैं कि उनको पुत्र रूप में कौन प्राप्त हुए, श्री सुखदेव गोस्वामी, जिनको आज हर संत पुरुष उनका गुणगान करता है, कुछ भी कथा बोलने से पहले उनके चरणों में प्रणाम करता है कि नहीं, और उनके चरणों में प्रार्थना करता है कि आप सबों के हृदय में हो, मुझे ऐसी वाणी दीजिए जो सबों के हृदय के अंदर आकर्षित करे लोगों को कृष्ण भक्ति के प्रति। आज हर साधु संत, हर सत पुरुष सुखदेव गोस्वामी को अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करता है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि अगर हमारे को संतान उत्पत्ति करनी है तो संतान उत्पत्ति भक्तों को तो कम से कम मनुष्यों को, वास्तव में तो मनुष्य मात्र को, और कम से कम वैष्णवों को, कुत्ते बिल्ली जानवर जैसे संतान उत्पत्ति कर देते हैं कि जब भावना जागृत हुई भोग करने की और संतान उत्पन्न हो गई। वैसा नहीं होना चाहिए, वैष्णवों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हमारी संतान हमारा खून पिएगी। अगर हम संतान उत्पत्ति से पहले इस बात पे सावधान हो जाएंगे कि हमें कैसी संतान चाहिए, तो कृष्ण कृपा करेंगे, और उसके लिए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, प्रॉपर गर्भाधान संस्कार करेंगे, इन नियमों का जब हम पालन करेंगे तो उस शुद्धिकरण से क्या होगा, हमारे को एक अच्छी संतान प्राप्त होगी। नहीं तो आज देखिए लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, लोगों को कहां रहना पड़ रहा है, हल्द्वानी में बना हुआ ओल्ड एज होम और भी खुल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? बूढ़े हो गए तो माता पिता को लात मार के ओल्ड एज होम, पर उसका कारण क्या है? माता पिता ने बचपन में ही ध्यान नहीं दिया, उनको संस्कार नहीं डाले। अगर बचपन से माता पिता ने संस्कार डाले होते आज उनको ओल्ड एज होम में ना जाना पड़ता। आज वो अपने माता पिता को नहीं बोलते, अरे बूढ़े बड़ंचर लोग चुपचाप बैठो, ऐसा नहीं होता, पर क्योंकि माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ये संतान चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, सीधे ये नहीं कि जानवरों की तरह संतान उत्पत्ति के कार्यक्रम में लग गए, पहले श्री भगवान के चरणों में जाके प्रार्थना करी, तपस्या करी, भजन करी कि हमारे को शुद्ध करो और ऐसी संतान दो। और जब ऐसी संतान प्राप्त हुई तो अब ये संतान कैसी थी, सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही 12 साल के हो गए और बड़े तो ऐसे हुए, इनके ऊपर माया का कोई प्रभाव ही नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से संतान प्राप्त हुई है। ये संतान जो है पूरी तरह से डिटैच, माया से डिटैच, हर चीज से डिटैच, एक निष्ठ ब्रह्म का चिंतन करते हुए जन्म लेते ही निकल गए जंगल की तरफ। सुखदेव गोस्वामी, उनको बड़ा भारी झटका लग गया व्यास देव जी को, यार इतनी मुश्किल से पुत्र मिला था, ये पुत्र तो भाग गया। और व्यास देव जी, हां पुत्र करते करते चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागे। पुत्र रुको, पुत्र को रोकने के लिए जब वो जाने लगे तो क्या हुआ, उनकी आवाज जाकर के सारे पेड़ों पे टकराने लगी, और जब पेड़ों पे टकराती थी तो पेड़ भी चिल्लाते थे, इको होता था, हां पुत्र। मानो ऐसा हो गया कि व्यास देव जी की वो जो पीड़ा है परमात्मा के रूप में वो सबों के हृदयों में प्रतिष्ठित रिफ्लेक्ट करने लगी और सब लोग चिल्लाने लगे, हां पुत्र। व्यास देव जी रोते रोते भागने लगे, पर वो पुत्र जो थे वो रुके नहीं, पुत्र तो जंगल की तरफ चले गए। व्यास देव जी ने सोचा, क्या करूं, कैसे मैं अपने पुत्र को वापस लाऊं, मेरा पुत्र तो भाग गया, इतनी मैंने तपस्या करी थी, मैं अपना प्रेम स्नेह किसके ऊपर डालूं, मैंने इतनी सुंदर भागवतम लिखी थी, किसको ये भागवतम सुनाऊं। तब व्यास देव जी ने क्या किया, कुछ शिष्यों को अपने ट्रेंड किया, 2 श्लोक सिखाए और बोला कि ये भागवतम के 2 श्लोक हैं, जाओ इनका वर्णन करना शुरू करो, इनको गाना शुरू करो, और इनको गाते गाते जंगलों में घूमो, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये जो भगवान का नाम रूप गुण लीला है, ये तो आत्मा राम, जैसे सुखदेव गोस्वामी आत्मा राम थे। आत्मा राम का मतलब क्या होता है? आत्मा राम का मतलब होता है जो अपने आप में ही संतुष्ट हो, उसको बाहर से कुछ ना चाहिए। तो ये पूर्ण नग्न अवस्था में चल रहे थे और किसी को इनको देख के कोई आपत्ति नहीं थी, और इनको किसी को देख के कोई आपत्ति नहीं थी, अपने आप में रमण करते हुए चल रहे थे। तो इनको उनको मालूम था आत्मा रामश्च मुनयो। अरे वो जो आत्मा राम मुनि होते हैं वो भी जब हरि के कथा नाम रूप गुण लीला को सुन लेते तो आकर्षित हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा भाई तुम जाओ इन श्लोकों को गाओ, कभी ना कभी मेरा लड़का इनको सुनेगा तो वो आएगा। तो ये जाते हुए बोलने लगे, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगे। जब सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगे क्या बोले ये, भराव पीड़म नटवर बपु करणयो कर्णिकारम बिभ्रद वासह कनक कपिसम वैजयंतीम चमालम रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की सुंदर रूप का वर्णन करते हुए बोलते बरहाव पीड़म, जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं मोर के पंख, क्या धारण किए हुए हैं मोर पंख जिन्होंने अपने शीश पे धारण किए हुए हैं, बरहाव पीड़म नटवर वपु। अरे जब वो चलते हैं उनका जो वपु है, उनका जो सुंदर विग्रह है, वो ऐसा लगता है कि निरंतर नर्तन कर रहे हैं, नाचते ही जा रहे हैं। चलते चलते हैं तो जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है वो नाच रहे हैं, कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो चल रहे हैं। और क्या नाम है, शिला राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि क्या होता है कि कृष्णा जब वृंदावन में है तो नीचे तक कभी धोती नहीं पहने, वो धोती को ऊपर लपेट के घुटने तक ले आते थे, हमेशा उनकी धोती घुटने तक रहती थी। इसलिए जब श्रीपाद आइंद्रपू जब राधे श्याम का श्रृंगार करने जाते थे तो वो ऊपर के कपड़े पहनाते थे, नीचे तक नहीं। वृंदावन में कृष्ण ऊपर कर लेते थे, क्यों कर लेते थे, क्यों
घूमने के लिए,
गोपवेश है ये, गोपवेश है, पर ऐसा क्यों करते थे, सारे गोप थोड़े ना करते हैं। तो महाराज एक्सप्लेन करे क्योंकि कब नाचने का मन कर जाए पता नहीं पड़ेगा, और धोती नीचे होगी तो डिस्टर्ब करेगी, ऊपर करके जब चाहो नाचते रहो। तो कृष्ण हमेशा नाचते रहना चाहते हैं, इसलिए नीचे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, फ्री रखते हैं अपने आप को। सही बात है, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, और अपने कानों में क्या किए हुए हैं, इसमें दो बोला जाए, कर्णयो बोला तो बोला दो कान, मतलब द्विवचन में है ये कर्णिकारम, और उसके अंदर कर्णेर का एक फूल रखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दो कान बोले और फूल एक बोला, तो इसका अर्थ ये हुआ, आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, कभी इस कान में रख लेते हैं कभी इस कान में रख लेते हैं। तो कर्णेर के फूल जो है अपने कानों पर लगा कर ये कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासह कनक कपिशम, और जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो कैसे हैं, कनक कपिशम, वो थोड़े थोड़े ब्राउन हैं, और वास्तव में बाकी उनका कलर कैसा है, जैसे पिघले हुए सोने का हो, सोने के जैसे रंग के पीले कपड़े हैं पर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश टिंच है। बिभ्रत वासह कनक कपिशम कपिश वैजयंती माला, और अपने गले में वैजंती माला धारण की हुई है। वैजंती माला किसको बोलते हैं, यस, जिसमें पांच अलग अलग कलर के फूल हों उसको वैजंती माला बोलते हैं। तो ऐसी वैजंती माला धारण करके है रंध्राण वेणु रधर सुधया, आप क्या कर रहे हैं उसमें जो वेणु के रंध्र हैं उनमें रंध्राण वेणु अधर सुधया फूक नहीं मार रहे, उसमें अपने अधरों का अमृत उसमें गिरा रहे हैं। अधर सुधया पूरे अनुगोपयृंद, और अब क्या हो रहा है इससे, अब केवल ऐसा नहीं हो रहा कि उसमें अधर सुधा डाल दिया तो निपट गया, वो सूखा हुआ बांस गीला हो गया, क्योंकि उसमें तो सब जगह छेद है, तो उसके आखिरी वाले छेद से क्या होता है, वो सारी सुधा निकल जाती है, वो निकलती है तो वो अमृत जो है वृंदावन की हवा में फैल जाता है, और हवा में जब वो फैलता है तो गाय आकर्षित होती हैं, गोपियां आकर्षित होती हैं, पेड़ आकर्षित होते हैं, पक्षी आकर्षित होते हैं, जन जन कृष्ण की उस बांसुरी के निकले हुए अमृत से आकर्षित हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं हमारे मंदिरों में विग्रह में देखते हैं भगवान के होठों पर बांसुरी नहीं लगी होती, नीचे होती है ना। तो आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि उसका कारण यह है कि कई बार जब वो बांसुरी ऊपर लेके जाते हैं अभी वो अपने होठों पे पहुंचते भी नहीं, बांसुरी जो है इतनी एक्सटेसी में आ जाती है, वो खुद ही बजना शुरू हो जाती है, इतने आनंद में हो जाती है। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधरों की सुधा भरते जा रहे हैं उसमें, पूरे अन गोपविंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और ऐसे गीत करते हुए जब वो चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वृंदावन की भूमि जो है वो चिन्मय है और वो आनंद लेना चाहती है, उस भूमि को आनंद देने के लिए कभी भी चप्पल जूता ना पहन करके नंगे पांव उस ब्रज भूमि पर चल रहे हैं कि इस भूमि को आनंद हो जाए। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, वृंदावन रण्यम स्वपद रमणम, अपने पदों को भी, अपने पदों को आनंद दे रहे हैं वृंदावन की उस रज से अपने आप को स्पर्श करवा के। कृष्ण के चरणों पे, कृष्ण के शरीर पे जब वृंदावन की रज स्पर्श करती है तो कृष्ण आनंदित हो उठती है और साथ ही साथ वृंदावन की भूमि आनंदित हो उठती है। ऐसा वर्णन किया जाता है कि जिस समय श्री कृष्ण प्रकट लीला कर रहे थे, कृष्ण जिस स्थान से चल के चले जाते थे, जब मिट्टी के ऊपर कोई निशान पड़ता है तो थोड़ी देर में हट जाता है, दूसरा कोई आदमी आ जाए तो, वो वृंदावन की भूमि सावधान रहती थी कि ये निशान बने रहे। गाय भी अगर चलती थी तो गाय भी उस पैरों के निशानों पे, चरणों के निशानों पे ध्यान नहीं, पैर नहीं रखती थी कि वो निशान डिस्टर्ब ना हो, उनको प्रिजर्व करके रखती थी। इसीलिए जब कृष्ण कभी भी गड़बड़ करते थे तो माता यशोदा आराम से ढूंढ लेती थी उन चरण चिन्हों को फॉलो करके। इसीलिए ब्रज भूमि का एक नाम है कृष्ण चरण चिन्ह विभूषिता, श्री कृष्ण चरण चिन्ह विभूषिता ब्रज भूमि की। तो इस प्रकार से वो ब्रज भूमि को आनंद देते हैं। इसीलिए ब्रज धाम में जाकर के भक्ति का एक मुख्य अंग क्या है कि ब्रज रज को अपने शरीर पे लगा लिया जाए, है ना। हम अभी कहीं पे चर्चा कर रहे थे, आप ही के साथ कर रहे थे शायद, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, वैष्णव चराणा धूलि गाया माखी धरिया वधूत वेश। कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में जब मैं वैष्णवों की चरण रज उठा करके अपने शरीर पे लेप लूंगा, वो अवधूत की तरह दिख करके पागलों की तरह नाचता गाता फिरूंगा और बोलूंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब आएगा वो दिन मेरे जीवन में। और ये ब्रज रज जो है ना केवल कृष्ण के चरणों से विभूषित है, सारे वैष्णव उस रज पर नंगे पांव घूम करके उसको अपने चरणों से भी विभूषित करते हैं। इसलिए वो रज तो यदि कोई अपने शरीर पे लगाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि वैष्णवों के चरणों में बड़ी शक्ति है, वैष्णवों की चरण धूलि में बड़ी शक्ति है। अगर हमने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया, उससे क्षमा याचना कर ली, वैष्णव हमें क्षमा कर देगा, पर वैष्णवों की चरण धूलि हमें क्षमा नहीं करेगी। जहां जहां वैष्णवों की चरण धूलि होगी, जहां जहां भक्तों का समाज होगा, वहां वहां हम कुपित होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो हमें भक्ति नहीं करने देगी वैष्णवों की चरण धूलि, ऐसा बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस विषय पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम नीचे जाएंगे, हम हरिद्वार के कुछ लीला स्थलियों का जब चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में। तो ये जो ब्रज भूमि है और इसका इतना सुंदर जब वर्णन किया, सुखदेव गोस्वामी जो आत्मा राम है प्रभावित हो गए, प्रभावित होकर के वो भागते हुए आए, अरे सुनो सुनो मुझे बताओ इस आदमी के बारे में, क्या ये सुंदर ही है या और भी कुछ करता है, अरे मुझे बताओ इस व्यक्ति के बारे में। तो उन्होंने बोला अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया पाया पे असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम तथोन्या कम वा दयालु शरणम व्रजे हम। अरे ऐसा दयालु इस संसार में और कौन होगा जिसकी शरण में मैं जाऊं, जो स्त्री अपने स्तनों पे कालकुट विष लगा करके इस नवजात शिशु का वध करने के लिए आई थी, ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए आई थी, ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए आई थी, पर क्योंकि इसके संपर्क में आ गई तो उसने क्या किया, लेभे गतिम धात्री उचिमतम तमतोन्या, उसको अपनी माता का पद दे दिया। ऐसा दयालु और संसार में कौन होगा जिसकी शरण में मैं जाऊं। सुखदेव गोस्वामी दीवाने हो गए, बोले मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे बताओ इसके बारे में और जानना चाहता हूं, और वो इनको फॉलो करते करते वापस श्री व्यास देव जी के पास आ गए। और फिर व्यास देव जी ने इनको भागवतम सुनाई, और फिर ये भागवतम आज हमारे पास समय अभी लिमिटेड है, तो हम ये जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम, अद्भुत श्रीमद् भागवतम जो आत्मा राम मुनियों तक को आकर्षित कर लेती है, जो मनुष्य के जीवन का असली लक्ष्य उसको बताती है, जो सारे कैटव धर्मों को बाहर निकाल के फेंक चुकी है, जो कि असली परम सत्य के बारे में हमारे को देती है, वो श्रीमद् भागवतम यहाँ प्रकट हुई शिला व्यास देव जी के द्वारा। श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की। तो इसीलिए हम जय करने के बाद केवल इतना ही ना करें, हम रेगुलर रूप में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया का मतलब है प्रतिदिन वैष्णवों की सेवा की जाए और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन या श्रवण किया जाए। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़े, नहीं तो कम से कम प्रतिदिन भागवत वैष्णवों से सुने, तभी हम भागवत की सेवा करेंगे और श्रीमद् भागवतम हम पे प्रसन्न होगी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, श्री व्यास देव जी की, श्री सुखदेव गोस्वामी की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। तो अभी जो भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं आपके इस कथा से, ये कल शाम को जब हम रुद्रप्रयाग में बैठेंगे तब हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्ण महाप्रसाद की। फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे तो लाइन लाइन पे बैठ जाए, एक बार सब खड़े हो जाए, यहाँ दरी तरीके से बिछा देते हैं, सब बैठ जाएंगे और आपको फिर से प्रसाद मिलेगा कृष्ण।